आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन विश्व के विकास के उद्देश्य से 6 नई पहलों का प्रस्ताव रखा। हैदराबाद में निवेश सम्मेलन में 36,600 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। कक्षा 3 से 8 के लिए मूल्यांकन का कार्य अब 8 दिसंबर से 13 दिसंबर 2025 के मध्य होगा। और प्रदेश में तेज ठंड के साथ अब घने कोहरे का असर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के पहले दिन विश्व के विकास के उद्देश्य से 6 नई पहलों का प्रस्ताव रखा। इनमें वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार की स्थापना, अफ्रीका कौशल गुणक कार्यक्रम, वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया दल, नशीली दवाओं और आतंकवाद के गठजोड़ का मुकाबला करने की पहल, ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप और महत्वपूर्ण खनिज परिपत्र पहल शामिल है। सम्मेलन के पहले दिन 2 सत्रों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा, यह पहल सभी के लिए विकास, प्रगति और कल्याण के लिए भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि इन पहलों से चहुमुखी विकास को हासिल करने में सहायता मिलेगी। समावेशी और सतत आर्थिक विकास पर पहले सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G20 वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार आने वाली पीढ़ियों के लाभ के लिए मानवता के सामूहिक ज्ञान का उपयोग करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में अनेक क्षेत्रों में निवेश की विद्यमान संभावनाओं को साकार करने के लिए सभी मिलकर कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री कल हैदराबाद में आयोजित इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश सत्र में उद्योगपतियों को संबोधित कर रहे थे। इसमें 36,600 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे लगभग 27,800 रोजगार सृजित होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रोत्साहनकारी निवेश नीतियों से निरंतर निवेश आ रहा है। सरकार की 18 नवीन निवेश नीतियां निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं। निवेशकों के लिए आवश्यक हुआ तो इन नीतियों की परिधि के बाहर जाकर भी उद्योगपतियों को हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हैदराबाद में अनेक उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई है। डॉक्टर यादव ने कहा कि अन्य राज्यों में उन्होंने बिना राजनीतिक एजेंडा के सिर्फ एक उद्देश्य औद्योगिक निवेश को लेकर यात्राएं की हैं। ऐसे इंटरैक्टिव सेशन मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की बहुआयामी संभावनाओं को बताने और निवेश के लिए आमंत्रित करने का माध्यम बने हैं। यह क्रम चलता रहेगा।
भारत को समृद्ध करना, ताकि भारत की सनातन संस्कृति से दुनिया का परिचय कराना, परस्पर दोनों राज्यों के संबंध अच्छे बने, दो नगरों के संबंध अच्छे बने, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सब प्रकार की बातें आए। ये 18 पॉलिसियां हमारे विभाग के द्वारा जारी की गई, उन पॉलिसियों पे तो काम हो गई सही। आपको क्या चाहिए वो सब देंगे। आप भी आगे बढ़ो, हमारा राज्य भी आगे बढ़े, हम और आप सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं।
प्रदेश की शासकीय और अशासकीय शालाओं में कक्षा 3 से 8 के लिए सोमवार 24 नवंबर से आयोजित होने वाला अर्धवार्षिक मूल्यांकन की तिथि बढ़ाई गई है। अब मूल्यांकन का कार्य 8 दिसंबर से 13 दिसंबर 2025 के मध्य होगा। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने वर्तमान में प्रदेश में संचालित चुनावी प्रक्रिया SIR में शासकीय कर्मचारियों की व्यवस्था के कारण कक्षा 3 से 8 के अर्धवार्षिक मूल्यांकन की तिथियों को आगे बढ़ाते हुए निर्णय लिया है। इस संबंध में नवीन समय सारिणी जारी की है। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य पूरी तत्परता से किया जा रहा है। SIR 2026 के दौरान गणना पत्रक भरने के लिए BLO या किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा किसी भी माध्यम से OTP मांगे जाने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने मतदाताओं को सतर्क करते हुए बताया है कि वर्ष 2023 की मतदाता सूची में स्वयं माता पिता या दादा दादी संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए मतदाता अपने क्षेत्र के BLO अथवा नजदीकी हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जानकारी ऑनलाइन voters.eci.gov.in या coelection.mp.gov.in पर भी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया है कि SIR पत्रक भरते समय सुरक्षा उपायों का पालन करें। आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ही SIR भरें। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए देश में 4 नए श्रम संहिताओं लेबर कोड्स को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। सरकार के इस कदम से वर्षों पुराने और जटिल 29 श्रम कानून समाप्त हो गए हैं, जिससे अब श्रमिकों के लिए एक सरल और एकीकृत कानूनी ढांचा तैयार हो गया है। रायसेन सहित देश भर के लोगों ने इस फैसले का जोरदार स्वागत किया है और इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम बताया है। इन बदलावों से देश के करोड़ों श्रमिकों को बेहतर वेतन, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित होगा। रायसेन के स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह कानून श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उनके अधिकारों को मजबूत करने का काम करेगा, महिलाओं और युवाओं के लिए एक मजबूत नींव बताया है। रायसेन के ऋषभ भार्गव ने कहा,
सरकार ने जो अभी श्रमिकों के विषय में जो बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, उसमें जो भी नियुक्ति पत्र श्रमिकों को मिलेंगे उसके आधार पे उन श्रमिकों को एक समान व्यवहार पूरे देश के श्रमिकों के साथ किया जाएगा। और मैं तो इस फैसले को बहुत ही अच्छे से देखता हूँ, क्योंकि श्रमिकों के हित में लिया गया है। कहीं ना कहीं यह निर्णय भारतीय सरकार ने बहुत सही लिया है, क्योंकि श्रमिक अपनी सीमित आय तक सीमित है। अब सभी को समान आय मिलेगी, सभी को समान वेतन सरकार देगी।
रायसेन के जितेंद्र शर्मा का कहना है,
जो भारत सरकार ने अभी जो श्रम कानूनों में परिवर्तन किया है वो एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है, क्योंकि जो लेबर वर्ग है वो जो काम करता है तो उसको जो चार उन्होंने कानून बनाए हैं, चार सुधार किए हैं, उसमें पहला ये है कि कहीं भी अगर लेबर काम करती है तो उसको एक नियुक्ति पत्र अनिवार्य, उससे ये लाभ होगा कि उसको एक ये तय हो जाएगा वो इस जगह पे काम कर रहा है। दूसरा उन्होंने एक नियम ये बनाया है कि उसमें जो न्यूनतम वेतन रखा है वो उसमें मेंशन रहेगा कि ये न्यूनतम वेतन इनको मिलना अनिवार्य है। तीसरा है सामाजिक सुरक्षा, अगर नियुक्ति पत्र मिलता है तो सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से भी वो उनके लिए लाभदायक रहेगा। इसमें अगर ऐसी कोई अनहोनी की परिस्थिति बनती है तो उन्हें एक जो सरकार द्वारा एक न्यूनतम जो सुरक्षा के हिसाब से मानदेय फिक्स किया गया है वो उनको प्राप्त होगा। और चौथा है इससे कि जो चौथा कानून बनाया है तो सरकार ने जो बनाया है कि उससे जो एक रूपता आ जाएगी, और इस तरीके से ये एक ऐतिहासिक फैसला है। निसंदेह इससे श्रम कानून में बहुत लाभ मिलने वाला है।
रायसेन के अवनीश प्रताप सिंह ने कहा,
कानूनों के बदले अगर चार कानून बन गए तो उनका परिपालन बहुत ही आसान हो जाएगा, और व्यक्ति भी, आम व्यक्ति भी इसको आसानी से समझ सकेगा। ये कानून बहुत ही अच्छा है, और बाकी जितने भी लोग नए रोजगार से जुड़े हुए हैं उनको भी एक सही सर्टिफिकेशन और मान्यता प्राप्त होगी, तो उसके लिए ये कानून बहुत ही।
अब खबर मौसम की। प्रदेश में तेज ठंड के साथ अब घने कोहरे का असर भी दिखाई देने लगा है। सुबह कई शहरों में कोहरे का असर देखा गया। शाजापुर में घना कोहरा छाया। अकोदिया शुजालपुर क्षेत्र में सुबह विजिबिलिटी 100 मीटर तक ही रही। इधर रात का पारा कई शहरों में 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। भोपाल इंदौर में 9.4 डिग्री, ग्वालियर में 13 डिग्री, उज्जैन जबलपुर में 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पचमढ़ी में सबसे कम 6.2 डिग्री रहा। राजगढ़ में 8.2 डिग्री, खरगोन में 8.6 डिग्री, नौगांव में 8.8 डिग्री, नरसिंहपुर में 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा। सीहोर जिले का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में कल 24 नवंबर से 3 दिन तक राज्य स्तरीय कार्यशाला में मंथन किया जाएगा। पन्ना जिले की ग्राम पंचायत शाहनगर का प्रदेश में सर्वाधिक स्वयं आय वाली ग्राम पंचायत की श्रेणी में चयन किया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।